राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो श्री चित्रलेखा देवी की। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कथा में सदैव जो है कितने भी थक के आए होंगे ना, तो अच्छी तरह से मुख मार्जन करके फ्रेश होके आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, नींद आ जाती है। कथा स्वयं भगवान है और भगवान के लिए हमें सदैव अच्छी तरह से स्वच्छ होकर रहना है। गोपियाँ भी श्रृंगार करती थी लेकिन स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए नहीं करती थी। वो कृष्ण को उनको देखकर उनका सौंदर्य उनकी सजावट देखकर आनंद मिले इसलिए गोपियां श्रृंगार करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम लोग सब लोग सज धजते हैं तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सजते थे लेकिन गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के नेत्रों को सुख देने के लिए हरे कृष्णा कम से कम हमें श्रृंगार के बिना कम से कम स्वच्छ और क्या कहते हैं फ्रेश होकर कथा में आना है क्योंकि कथा और कृष्ण इसमें कोई अंतर नहीं है। स्वयं कृष्ण आपको आपके लिए आपको आपके सामने कथा के रूप में प्रकट होने वाले हैं प्रकट होते हैं। एक तो लीला भगवान की स्वयं कृष्ण है और दूसरी बात यह है जहाँ पर भी उनकी कथा चलती है वे स्वयं वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। इसी कारण श्री जगन्नाथ भगवान और उडुपी कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बहुत लंबी कहानी है वो क्योंकि भगवान को अपनी कथा सुनने में बहुत रुचि है। खुद के गौरव के लिए नहीं लेकिन उनकी कथा उन्हें बहुत प्रसन्न है प्रिय है बहुत। कहीं पर भी कथा उनकी होती है तो कृष्ण बलराम आते हैं प्रभु रामचंद्र आते हैं हनुमान जी आते हैं नारद मुनि आते हैं सुखदेव आते हैं अगस्त्य मुनि आते हैं व्यासदेव आते हैं सारे संत मंडली अगर आप कोई भी नहीं आएंगे तो वो आएंगे अगर कथा हो रही है तो अगर संत मंडली यहाँ पर आने वाली है तो हम लोग मुरझे मुरझे कैसे आ सकते हैं। हमको फ्रेश आना चाहिए ना, क्योंकि वो आपको देखने वाले, आप उनको देख नहीं सकते, वो आपको देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कौन सो रहे हैं, कौन जग रहे हैं, कौन जमाई दे रहे हैं, कौन तत्पर बैठे हैं, कौन आराम से बैठे हैं, सब देखते हैं। दूसरी बात, ये सब ध्यान से सुनो आप, 18 पुराण व्यक्ति रूप में कथा में उपस्थित रहते हैं, 108 उपनिषद व्यक्ति रूप में कथा में उपस्थित रहते हैं, 4 वेद उपस्थित रहते हैं, सारी पवित्र नदियाँ सप्त नदियों के साथ उपस्थित रहती हैं, सारे समुद्र उपस्थित रहते हैं, सप्तद्वीप उपस्थित रहते हैं, सारे तीर्थ स्थान व्यक्ति रूप में कथा में उपस्थित रहते हैं। ऐसी कथा की योजना है, कृष्ण कथा कोई साधारण चीज़ नहीं है। कृष्ण कथा जहाँ पर चलती है वहाँ पर ये सारा दिव्य वातावरण होता है। इसलिए यूट्यूब पर और ऑनलाइन कथा देखना और प्रत्यक्ष बैठना, उस थोड़ा सा अंतर है, लाभ है उसके, लाभ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जब बैठते हैं तो इन सारे लोगों का सूक्ष्म अदृश्य संग हमें प्राप्त होता है, उनकी दिव्य चेतना के प्रभाव में हम सब लोग बैठते हैं और कथा सुनते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, जागृत होना चाहिए आपको कि आप किसके बीच में बैठे हों। अगर इस सभा में अभी अगर प्रधानमंत्री बैठे हैं तो सब लोग जागरूक रहेंगे ना उनके लिए कि प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, या कोई बड़ा पुलिस अफसर भी आके बैठा है, बार बार उसको देखेंगे कि है ना वो है कथा में बैठा है। तो जो आएंगे वो सब बोलेंगे वो देखो प्रधानमंत्री बैठे। तो कितनी होती है अवेयरनेस, या सतर्कता कितनी होती है। यहाँ प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है और अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कथा का पूरा लाभ नहीं होगा। कथा स्वयं कृष्ण है, कथा में कृष्ण आते हैं और नाम रूप लीला धाम इन चार रूपों में से भगवान हमें सत्संग देते हैं, उसमें से एक माध्यम है कथा। और भगवान की कथा अनेक प्रकार की है। एक कथा ईश्वर लीला है जो द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, श्रीरंगम में, बद्रीनाथ में, अयोध्या में, वो भगवान भगवान है इसकी स्मृति उनको भी है और उसी भाव से वो लीला करते हैं। जैसे मथुरा से बाहर गए तो जितना भी काम किया वो सब ऐश्वर्य में गिना जाता है, वो सब ऐश्वर्य लीला है। और ऐश्वर्य लीला जो है वो देवकी कृष्ण करते हैं। देवकी के घर में जो कृष्ण आए थे, जो बाद में यशोदा के कृष्ण में विलीन हो गए, वो देवकी वाले कृष्ण जो थे वो ऐश्वर्य कृष्ण थे, इसलिए वो पहले चार भुजा में आए थे, है ना, आए थे ना। यशोदा के सामने वर्णन आता है क्या कि कृष्ण चार भुजा में आए और बताया कि आप द्रोण और धरा हो, कई जन्मों से आप मेरा भजन कर रहे हो, उसके फल के रूप में मैं आपके पास आया हूँ। वो सब देवकी वसुदेव को बताया कि उनकी उनकी भक्ति में ऐश्वर्य भाव था, सदैव उनको ये स्मृति थी कि कृष्ण बलराम भगवान है, मेरे बच्चे हैं लेकिन भगवान है, ये उनको स्मृति थी, इसलिए उनके भक्ति का एक स्तर है। यशोदा नंद महाराज को और ब्रजवासियों को कभी खबर नहीं थी इस बात की, ना जानकारी थी ना ज्ञान था कि ये कृष्ण भगवान है। कभी कभी वो चर्चा करते थे, है भगवान है क्या वो, बोले नहीं 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 भगवान थोड़ी, हमारा तो यार है, वो खेलते हैं उसके साथ, कूदते रहते हैं, थोड़ी भगवान हमारे साथ छलांग लगाएंगे पेड़ की शाखा से नदी में, विष्णु वैकुंठ के आएंगे और कदम के पेड़ पर चढ़कर हमारे साथ में छलांग लगाएंगे, डड़ा बिश, नहीं हो सकता ना। तो वो खुद ही कहते हैं कि काना भगवान है क्या, देखो इतना बड़ा गिरिराज को उठाया, नहीं नहीं वो कैसा काना, अरे हमारे साथ चोरी करता है वो, छुप छुप के जाकर बालकों को चिमटा निकालता है, क्या क्या झूठ बोलता है। तो भगवान झूठ बोलता है क्या, देवता झूठ बोलते हैं, ऋषि मुनि झूठ बोलते हैं। तो ये माधुर्य भाव है। प्रादुर्भाव यानी एंट्रेंस, संशय डाउट आने पर भी वो मिट जाता है, इतना माधुर्य का प्रभाव है, भगवान भगवान है ये बात भी वो मिटा देते हैं। कई कहानियां हैं, भगवान ने चंद्र सरोवर के पास चतुर्भुज रूप दिखाया गोपियों को, रास में से अंतर्धान हो गए और चतुर्भुज वेश धारी करके रास्ते में खड़े हो गए, गोपियों ने प्रणाम किया, ओम नमो नारायणाय, आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है क्या? उनको पूछा तो उन्होंने चार हाथ जो पैदा किए थे उसमें एक ने बताया वो इधर गए हैं। सब गोपियां उनको छोड़ के भागी वो कृष्ण को ढूंढने के लिए। विष्णु के प्रति उनको आदर था लेकिन लगन जो थी वो कृष्ण के प्रति थी, वो चले गए उसके पीछे। फिर राधा रानी आई और राधा रानी ने भी जिस प्रकार से पूछा, दंडवत किया, पूछा आपने मेरे हमारे कृष्ण को देखा है? तो ना उनकी दो भुजाएं पिघल गई, शंख चक्र पद्म गदा अदृश्य हो गया और अपने आप दोनों हाथों में मुरली आ गई और बजाने भी लगे। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ उनके नियंत्रण के बाहर सब हो रहा है, वो सोच समझ के नहीं बजा रहे हैं। वो माधुर्य का प्रभाव ऐसा है कि ऑटोमेटिक, जैसे वो चाबी दिया हुआ खिलौना होता है ना, वैसे हो गया उनका। तो भगवान ब्रज में रहकर कभी कभी ये प्रयत्न भी करते हैं कि मैं भगवान हूँ। सात दिन सात रात भगवान ही उठा सकता है ना, कोई इंद्र कोई चंद्र कोई सूर्य नहीं उठा सकता है गोवर्धन को। भगवान ने भगवान का कार्य किया, शक्ति प्रदर्शन किया, फिर भी किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है। सबने नंद बाबा को बोला, अरे तुम्हारा खाना तो भगवान है, देखो तुम तो एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। वो सात दिन सात रात पूरी गोवर्धन को उठाए रखा, तो थोड़ी भगवान है, थोड़ी भगवान झूठ बोलते हैं। फिर बोले नहीं नहीं तो ऋषि मुनि होगा। अरे ऋषि मुनि कितने संयमी होते हैं, कितना नियम का पालन करते हैं, तो जरा भूख लगेगी तो इतना चिल्लाता है, इतना जमीन पर बैठ के गिरता है, रोता है, हाथ पांव झाड़ता है। और मक्खन चोरी करने गया तो बालकों के कान में डालता है पानी, अगर नहीं मिलेगा मक्खन तो सोते हुए बालकों को पलने में चिमटा निकालता है, और ये भी अगर नहीं मिला इसके बाद भी तो वहाँ पेशाब करके चला जाता है। ये कोई भगवान है? ऋषि मुनि है क्या ये? नहीं, वो देवता होगा कोई देवता। अरे देवता कितने संयम से नियम से और आदर से रहते हैं। देवता ऐसे होते हैं क्या, मट्टी खाते हैं, माखन चोरी करते हैं? अभी सुना है क्या आपने कि सूर्य देवता हमारे घर में है, माखन चोरी करके ले गए? तो वो अपने आप बोल रहे हैं कि भगवान है और वो बात काटी जा रही है। तो अपने आप बोल रहे हैं कि देवता है, बात काटी जा रही है। अपने आप बोल रहे हैं ऋषि मुनि होगा शायद, वो बात भी उनके द्वारा ही काटी जा रही है। और इसका इस कथा के इस सभा का अंत किसमें हुआ पता है आपको? ये सब लोग आगे पीछे चर्चा करते रहे कि देवता होगा, ये होगा, वो होगा, और एंड में ना सब लोग अपने कुर्सी से आसन से पेट पकड़ते हुए हंसते हंसते गिर गए जमीन पर, और जमीन पर लोटपोट होकर हंस रहे कन्हैया की लीला सुन के। इसमें वो बात गुम हो गई, इसमें वो बात गुम हो गई कि उन्होंने कहा था कि भगवान होगा, वो बात ही कहीं गुम हो गई। सारा ऐश्वर्य जो प्रकट हुआ था सब गुम हो गया। तो एक होती है ऐश्वर्य की लीला जो प्रभु राम ने की, नरसिंह भगवान ने की, वराह देव ने की, हर प्रकार के दशावतार में वो ऐश्वर्य की लीला है। भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, वैराग्य, धन संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान, बुद्धि, वो सब उसका प्रकट करते हैं। और एक होता है माधुर्य लीला। तो माधुर्य में कोई किसी को ज्ञान नहीं होता है कि ये भगवान है, इसलिए वो ब्रजवासी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ में उनको लीला करनी है, समझो उनको अभी तय मन आया कि ये 50 लोगों के साथ लीला करनी है, तो सारे 50 तो भगवान के भक्त हैं, सब बढ़िया बढ़िया शास्त्र पढ़ के भगवान के भक्त बने हैं, भगवान को भगवान मानते हैं, तो अभी उनके साथ में गुल्ली डंडा कैसे खेलेंगे? अगर कोई बार बार दंडवत कर रहा है और आप बोल रहे हैं अरे गुल्ली डंडा खेलो ना, तो कैसे खेलेंगे? वो नहीं खेल पाएगा क्योंकि इतना आदर है उसके मन में। वो बोलेगा चलो पतंग उड़ाते हैं, तो दंडवत करने वाला व्यक्ति पतंग नहीं उड़ा सकते उनके साथ में। वो बोलेंगे चलो कुश्ती खेलते हैं, बोले नहीं 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 दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, ओम सहस्र शीर्षा सहस्त्रपात, ऐसे श्लोक ही बोलते रहेंगे, ब्रह्म संहिता पुरुष सूक्त। और भगवान को ना अपने बराबरी के लोगों के साथ में लीला करने की इच्छा होती है, क्योंकि खेल किसके साथ खेलते हैं हम लोग? बराबरी के साथ खेलते हैं ना। बच्चे भी ना बहुत होशियार होते हैं, बहुत बच्चों का समुदाय है 5 साल से लेकर 12 साल तक, लेकिन 12 साल के बराबर बच्चे 11-12 साल के बच्चे ढूंढते हैं उनके साथ ही खेलते हैं, 5 साल के साथ खेलते नहीं है, और 5 साल के भी 5 साल के ही बच्चे ढूंढते हैं उनके साथ खेलते हैं, उनको बराबर अंडरस्टैंडिंग रहता है कि ये मेरे बराबर का है। ट्रेन में भी देखो आप, छोटे बच्चे छोटे बच्चों के पास जाएंगे, बड़े बच्चे बड़े बच्चों के पास जाएंगे। आप कभी नोट किया इस बात को? कोई पूछते नहीं है आप 5 साल के हो, मैं भी 5 साल का हूँ, चलो साथ में खेलते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप उनको एक अंदर से ऐसा सिक्स सेंस होता है, इससे वो पता चलता है उनको। तो वैसे भगवान को अपने साथ वाले, साथ वाले का मतलब क्या है, भगवान परम शुद्ध है और उनके जैसे परम शुद्ध जो भक्त हो चुके हैं उनके साथ में उनको खेलने की इच्छा होती है, और वो तो दंडवत ही कर रहे हैं तो क्या करते हैं वो, पता है आपको? उनके साथ खेलने के योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, एक उनकी जगन मोहिनी नाम की माया है, अनेक प्रकार की माया है, हाँ, परास्य शक्तिर विविधाई वसूयते, अनंत प्रकार की माया है, उसमें एक माया है जगन मोहिनी माया। वो जगन मोहिनी माया भक्तों के बुद्धि से, भक्तों के स्मृति से भगवान भगवान है ये बात डिलीट कर देती है। फिर बचता क्या है, प्रेम बचता है, भगवान का भगवान वाला ज्ञान खत्म, रवि इतना ही बचता है कि मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, इतना ही बचता है। और वो करने के बाद में वो ब्रजवासियों को ब्रज में जन्म देते हैं। प्लीज नोट केयरफुली, ये ब्रजवासियों की योग्यता है। ये मत समझना कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो सब पता है उनको, लेकिन प्रेम इतना 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 भाव विभोर स्तर पर है कि वो भगवान भगवान है, इस बात को वो उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसको कहते हैं ओवरवेलमिंग, यानी इतना इतना ज़्यादा माधुर्य है कि उसके नीचे अगर कोई एक कण ऐश्वर्य का होगा तो दिखता ही नहीं कहीं। ऊपर से अगर ठंड का समझो मौसम होगा, अभी ठंड कैसे चल रही है, आप घी लेके आओ तो क्या होता है, घी का जम जाता है। आप वो घी पतला जब ही है गर्म, वो डालने के पहले उसमें 4-5 वो दाने डाल दो, मीनी क्या कहते हैं काली मिर्च के नीचे, और ऊपर से गर्म घी डाल दो और रख दो, और सुबह देखो क्या होता है, जम जाता है। नीचे के दाने काले दिखते क्या आपको? ऐसा करके देखो उल्टा तो भी दिखते नहीं, क्योंकि इतना गाढ़ा माधुर्य है। ये राधा गोविंद महाराज जी का उदाहरण है। माधुर्य को समझे कैसे, माधुर्य कैसे ऐश्वर्य को दबाता है, छुपा देता है, ये इसका उदाहरण है। मैंने इस बात का यहाँ पर बरसाने में अनुभव किया है कि मैं अभी तो आप लोग आए, हमने आपको डरा दिया था बहुत बहुत ठंडे बहुत ठंडे बहुत ठंडे, लेकिन वास्तविक में ठंड जो है वो समाप्त हो चुकी है, अभी वो गर्मी के रास्ते में चल रही है। जो मैं बता रहा था वो आशा थी कि 6 और 7 टेम्परेचर रहेगा, लेकिन जब आए यहाँ पर तो 11 और 12 टेम्परेचर था, आज 14 टेम्परेचर था मिनिमम बात कर रहा हूँ। तो जब भी 6 टेम्परेचर होता है ना, तो यहाँ पर कैंप में मैं रहता था और रूम में अगरबत्ती भगवान को दिखाकर रखता था, वो अगरबत्ती ठंड के मारे बुझ जाती थी, कई बार जलानी पड़ती थी बार बार। तो क्या हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है क्या, कुछ आ रहा है, नहीं कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन ठंड इतनी है, बाहर इतनी धुंध है कि अपने आप वो अगरबत्ती का जो ज्वाला है ना वो क्या कहते हैं निखारा ठिणगी बुझ जाती। तब मैं समझ गया कि ये ऐश्वर्य और माधुर्य का चक्र क्या है। समझ में आपको आया ना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझेगा आपको माधुर्य ऐश्वर्य का फर्क, तो यहाँ का जो रहस्य है वो समझ में आएगा। देखो कथा सुनना एक बात है, बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, हाँ, लेकिन उसका तत्व समझ में आना बहुत जरूरी है। मनोरंजन के स्तर पर अच्छा लगता है, भगवान की कथा ना बहुत चटपटी लीला होती है। अरे ऐसे चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में उनाए, हाँ मजा आता है उनका लीला सुनने के लिए, क्या क्या करते रहते हैं, मजा आता है बहुत, सब लोग हंसते हैं बहुत जोर से। लेकिन मनोरंजन के रूप में कृष्ण की लीला नहीं सुननी चाहिए, मनोरंजन होगा अपने आप, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए उसको, आत्मशुद्धि के लिए और प्रेम से उनकी कथा सुननी चाहिए। जैसे समझो भी आप, समझो आपका बेटा है राहुल, हाँ रास, रास गौरांगा, और अगर रास गौरांगा के विषय में यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई तो सबसे अधिक कान लगाकर कौन सुनेंगे, उनके माता और पिता देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, ठीक से पर्याप्त मात्रा में बोल रहा हूँ कि कंजूसी कर रहा हूँ, पूरा 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 एनालिसिस करेंगे सुनते समय, क्योंकि रास गौरांग पे उनको प्रेम है, वो उनका पुत्र है। वैसे ही अपना आप्तजन, अपना मानकर कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, ये हमारा कृष्ण है, दिस इज अवर डियर कृष्णा। अरे वो षड ऐश्वर्य पूर्ण वैकुंठाधिपति विष्णु का अवतार है, ये लीला करने के लिए आया है, ऐसा सब सोच के नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि प्रेम से जब कोई बात सुनते हैं तो उसका लाभ अलग होता है, और ये ज्ञान के रूप में सुनते हैं तो उसका दूसरा लाभ होता है। इतना काफ़ी है ना आपको जागरूक करने के लिए। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि माधुर्य लीला जो है, दास्य की माधुर्य लीला होती है, माधुर्य लीला केवल गोपियों के बीच में नहीं होती है। जिस जिस लीला में भगवान भगवान है इसकी जानकारी नहीं है, वो सब माधुर्य है। दास्य माधुर्य, साख्य माधुर्य, सखा लोग भी माधुरता में है, क्योंकि पूरा ब्रज मधुरता में है, माधुर्य में है। तो सखा लोग भी खेल रहे तो माधुर्य में है, अर्जुन माधुर्य में नहीं है। अर्जुन परम ब्रह्मान परम धाम परम पवित्रम परमम भवान, वो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको जानकारी है मित्र होने पर भी कि मेरा मित्र भगवान है। भीम को पता है, युधिष्ठिर को पता है, विदुर को पता है, भीष्मदेव को पता है, ये सब लोग पक्के भक्त है, महाजन है ये सब, लेकिन ऐश्वर्य वाले हैं। यहाँ पर भी एक अर्जुन है, नंद बाबा के भाई का लड़का है, अष्ट सखा में से एक है, लेकिन वो अर्जुन डिफरेंट है, वो माधुर्य वाला है। तो ये माधुर्य की लीला ना बहुत अंतरंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है और जो एक्टिविटी होती है वो बहुत गहन होती है। आप लोग पब्लिक में चर्चा करते हैं क्या कि आप लोग अकेले में क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो गुप्त बातें होती हैं। वैसे ही माधुर्य लीला की बातें होती हैं, कभी कभी समझ में नहीं आती है, और कभी कभी लगता है अरे भगवान भी ऐसा करते क्या, अरे, क्योंकि हमारी समझ जो इतनी शुद्ध नहीं है। इसलिए माधुर्य लीला श्रवण करने के समय एक सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। वो सावधानी ये है कि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे कहते हैं ना, ऑ एंड रेवरेंस, पूरे आदर सम्मान के साथ वो सुनना चाहिए, ये सोचकर कि अरे ये सब बातें सुनने के मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनाई जा रही है, मैं देखने को सुनने को मिल रहा है। उत्कट लीला, राधा और कृष्ण की प्रेम लीला, बरसाने की लीला, जरा कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं, हाँ, चार फीट फूलों की पंखुड़िए में, और राधा रानी उनके ऊपर चल रही है, वो तुरंत उठ जाते हैं तो राधा रानी बहुत दुख करती है, अरे मैंने छाती पर पाँव रखा, और आलिंगन देती है प्रेम से। तो ये भी उत्कट लीला होगी ना, प्राइवेट लीला होगी ना, और हम लोग सुन रहे हैं, और दृश्य में भी मन में भी दृश्य आता है। तो उस समय अपने आप को ये सब बातें सुनने के लिए अयोग्य समझना चाहिए, एक प्रेक्षक के रूप में सुनना चाहिए, उसमें सहभाग की भावना से नहीं सुनना चाहिए। डोंट लिसन एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द लीला। प्रवेश तो आपको लीला में मिल रहा है, लेकिन उसके सहभागी मत बनो, प्रेक्षक ही बने रहो, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है, आचार्यों की कृपा है इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। और जितना आप बरसाने के अंदर घुसोगे ना, जैसे भानु महल से दानगढ़ में जाओगे और उत्कट, विलासगढ़ पे जाओगे और उत्कट, और मानगढ़ जाओ तो अति उत्कट, वहाँ पर की लीला समझना ही मुश्किल है। कैसे राधा रानी लूट रही है, कैसे बैठे हुए हैं, कृष्ण कैसे रगड़ रहे हैं अपने नाक को। जयदेव गोस्वामी इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने गोपी के अवतार हैं वो, और गीत गोविंद जैसा श्रेष्ठ शास्त्र लिख रहे हैं, लेकिन जयदेव गोस्वामी भी इस बात को सहन नहीं कर पाए कि मेरे भगवान ये गोपी, राधा रानी नाम की गोपी, इसके चरणों में नाक रगड़ रहे हैं, आंसू धो बहा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, मुकुट मोर मुकुट रख रहे हैं, वो रज और अश्रु का मिलकर जो मिक्सचर है गीला मट्टी का, उसमें लोटपोट हो रहे हैं, रोलिंग इन द डस्ट, उनको ये सहन नहीं हुआ, ये बात सत्या ही सहन नहीं हुई, तो दिमाग गर्म हो गया, उनको चले गए ना गंगा में स्नान करने के लिए, लिखना विखना बंद कर दिया उन्होंने, दृश्य देख रहे हैं, साक्षात्कार जो हो रहा है वो लिख रहे हैं, और साक्षात्कार में दिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है ना बार 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 चरण में सर रख रहे हैं, तो उनको ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ। तो भगवान ने स्वयं जयदेव जी का रूप लेकर वो जो नहीं लिख पाए वो स्वयं अपने अलग अक्षरों में आके लिख दिया, वो काव्य पूरा कर दिया, और बाद में आके जयदेव ने देखा अरे ये तो मैंने लिखा नहीं, मेरा अक्षर भी नहीं है, तब उनको यह पता चला कि मेरा रूप लेकर भगवान ने ही ये लिखा है, और मुझे जो लिखने में संकोच हो रहा था वो लिखने में भगवान को स्वयं कोई भी संकोच नहीं है। जो एक भगवान के भक्त के रूप में मुझे लिखने में संकोच था, मैं लिख नहीं पाया उसको, उसे स्वयं आकर लिखने में भगवान को कोई संकोच नहीं है। ये उनकी नम्रता है। ये उनका नम्रता क्यों है कि राधा रानी मेरे लिए कितनी बड़ी है, इसको दिखाने के लिए वो संकोच नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो मेरा भक्त है, इसको मैं क्यों बताऊं कि मैं राधा रानी का भक्त हूं, इसको करने दो मेरी भक्ति। है ना, अपना पोजीशन बनाए रखो भक्त के सामने, लेकिन वो नहीं कर रहे। शंकर जी महाराज कैसे अपने देखो, पार्वती के सामने मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं, और मोहिनी भाग रही है ऋषियों के बीच में जो शिव जी के भक्त हैं। फिर विरक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, शिव जी के आशीर्वाद से विरक्त बनकर भजन कर रहे हैं, और उनके बीच में से मोहिनी एक एक वस्त्र उतार कर भाग रही है, लेकिन शिव जी को संकोच नहीं है कि मेरे शिष्य क्या बोलेंगे, मेरे भक्त क्या बोलेंगे। अरे ये हमारे भगवान है, हम तो इतना, उन्होंने सबने सर झुका लिया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं बातें, आई डोंट वांट टू सी। लेकिन भगवान उनके जो इष्ट भगवान है उनके शिव जी महाराज बिंदास भाग रहे हैं उनके बीच में से उनके लिए, क्योंकि शिव जी को संकोच नहीं है, उनको पता है ये मेरे भगवान है, उनके सौंदर्य के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। जनता को दिख रहा है कि ये औरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके भगवान के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये दिखाने में शिव जी को संकोच नहीं है, ये भक्त की नम्रता है, और उसके ऊपर भगवान की नम्रता है, भगवान को भी संकोच नहीं है। तो ये सब इतनी प्रस्तावना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ कुछ लीलाएं यहाँ की बहुत चटपटी है, इतनी चटपटी है कि राधा रानी ने भी उसको प्राइवेट रखने के लिए खुद स्वयं प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है, बाकी सारे ब्रज में सब जगह राक्षस लोग आते हैं, आए हैं, उनका वध भी हुआ है, लेकिन जब मुठभेड़ होते हैं ना कभी, तो एक मूड चेंज हो जाता है। आप अच्छा अच्छा चीना झपटी करके माखन खा रहे हैं, इसका मुँह के निकाल के खा रहे हैं, उसके मुँह में दे रहे हैं, उसका डब्बा लंपास कर रहे हैं, फिर कोई कैच कर रहा है, वो पीछे भाग रहा है, वो रो रहा है, इसके बीच में हा 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 कोई राक्षस आ गया, भले गेम बंद, इसको देखता हूँ जरा पहले। होता है ना ऐसे, तो भाव बदलता है ना पूरा, वीर रस जागृत हो जाता है। तो माधुर रस चल रहा है उसमें, तो अचानक वीर रस आता है, तो उसमें व्यवधान आता है, तो वो ब्रज के बाकी इलाकों में ठीक है, हो सकता है, लेकिन बरसाने में उतने प्रकार की उत्कट लीला नहीं चल रही है, उससे कई गुना अधिक उत्कट अंतरंग प्राइवेट लीला चल रही है। उसमें राधा रानी भी समझती है कि इतने उत्कट प्रेम लीला के बीच में राक्षस नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए उन्होंने कंस को जब आया तो स्त्री बना दिया, किया कुछ नहीं, खाली वो थी वहां पर, उनके उपस्थिति में आते ही वो स्त्री बन गया। कोई राक्षस नहीं आया, वादा किया उसने, मेरा मैं भी नहीं आऊंगा, मेरा कोई आदमी भी नहीं आएगा। तो राधा रानी ने क्या निश्चित किया कि इधर कोई राक्षस प्रवेश नहीं करेगा, और लीलाओं के बीच में व्यवधान नहीं करेगा, भंग नहीं करेगा, बीच में अखंड नहीं डालेगा उसके अंदर। अभी आप समझ सकते हो कि बरसाने में क्या चल रहा है, वो कृष्ण नंदगांव में रह नहीं सकते बहुत देर तक, वो ऐसे ना बावड़ो है के हम तो है नहीं। बावड़ा मतलब क्या, पागल, उसको बावड़ा कहते हैं, बावड़ी है गई, बावड़ो है गो, ऐसे कहते हैं। तो वो ऐसे ना बावरे से होकर बरसाने में आते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं सर, कब देखेगा दर्शन, कब राधा रानी दिखेगी। तो कुछ वाल बाल आते हैं वहां के बड़े, अरे कन्हैया क्या कर रहे है, नहीं कंकड़ बिन रहा हूँ रास्ता साफ कर रहा हूँ। तो उनका क्या काम बरसाने में आके रास्ता साफ करने का, लेकिन वो दिखा रहे कि मैं यहाँ पर रोड साफ करने के लिए आया हूँ, और वो गया तो फिर वापस देखने लगेंगे, फिर कोई आया तो कंकड़ ढूंढने का काम करें, ऐसा लगता है कि बिजी है बहुत, लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। ये कृष्ण की स्थिति यहाँ पर, और जब भी मिलने का समय होता है ना तो अनंत बार सखी बनकर आते हैं, श्यामा सखी, गोप देवी, और फूल बेचने वाली, कंगन बेचने वाली, मेहंदी निकालने वाली, कभी योगी राज, कभी ब्रह्मचारी, कभी सिद्ध योगी, बहुत सारे छद्म वेश पहन कर आते हैं, उसको कहते हैं छद्म, यानी छद्म का मतलब क्या होता है हिंदी इंग्लिश में क्या होता है? छद्म यानी चीटिंग, जो दिख रहा है वो नहीं है, दूसरा है ये कुछ, ऐसा रूप धारण करके बहुरूपिया बन कराते हैं, ऐसी लीला यहां पर है। भी होता ऐसा ही है, मैं लिखता कुछ हूं और बोलता कुछ हूं, कोई बात नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वो जानते हैं ना कृष्ण भगवान है ना, इतने इतने एक्सपर्ट चोर हैं, इतने एक्सपर्ट चोर हैं कि समझो आप अभी कृष्ण से बात कर रहे हैं, गोपी बात कर रही है, तो उनकी उनका दर्शन, उनकी वाणी इतनी सम्मोहिनी है कि वो सुनकर ही सामने वाला मुग्ध हो जाता है, मग्न और मुग्ध, कल बताया था ना मैंने, मग्न और मुग्ध हो जाता है, फिर उनको समझता नहीं क्या चल रहा है आगे आजू बाजू में, और वो मग्न मुग्नता में कब उनका नाक की नथनी निकाल लेते हैं, कान का कुंडल निकाल लेते हैं, यहाँ का अलंकार निकालते हैं, यहाँ का निकालते हैं मणि, कभी नेकलेस कभी बैंगन कंगन निकाल लेते हैं, समझ में नहीं आता है। जब उनको छोड़कर विदा करके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कुंडल ही नहीं है, एक कंगन ही नहीं है हाथ में, नाक की नथनी कहाँ गई, मैया पूछ रही है क्या हो गया। तो रोज का है ये, रोज का परेशानी, और कभी कभी पकड़ लेते हैं उनको वहीं कभी, तो कहते हैं कि अरे जब मैं आपको मिलता हूँ ना, इतना मग्न हो जाता हूँ कि मेरे हाथ मेरे नियंत्रण के बाहर जाते हैं, और कब आपके नथनी के पास जाते हैं उसको निकाल कर जेब में रखते हैं, कुछ समझता ही नहीं, मुझे मुझे याद ही नहीं कब मैंने जेब में रखा, उसके जेब में मिलता है सब वो सामान। गोपियाँ भी बहुत चालाक है, ऐसा है सब स्थिति। तो गोपियाँ ना बहुत परेशान हो गई, लगा ये बहुत रोज का नाटक है, ये इनको एक बार सबक सिखाना चाहिए। तो ये साधारण था, कृष्ण उन पर चोरी करके हावी हो जाते हैं, लेकिन गोपियों को योजना बनानी पड़ती है इसको मात देने के लिए, तो वो एक अच्छा मिलके मीटिंग करते हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि रोज आके वो हमसे माखन चुराते हैं, दही चुराते हैं, ये चुराते हैं, वो चुराते हैं, गहने चुराते हैं, सब कुछ चुरा देते हैं, तो हमको बहस करनी पड़ती है वो नहीं देने के लिए, उसको कहते हैं नोकझोंक। नोकझोंक का मतलब क्या है, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अरे वो बोलेंगे हमारे पिताजी का राज्य है यहाँ पर, बोले नहीं नहीं मेरे पिताजी का राज्य है, अरे नहीं यहाँ की रानी वो है, यहाँ की राजकुमारी वो है, अरे हम तो नंदगांव के हैं, ऐसा सब चलते रहता है। तो अभी एक दिन क्या करेंगे, नो नोक झोंक, जैसे आएंगे अपना सामान तुरंत उनको दे देंगे, है ना, मांगने के पहले बोला बैठो बैठो आराम से बैठो, दोना वोना लेके आओ, बैठो आराम से, सब परोसेंगे, आज का बेस्ट ऑफ बेस्ट दही लाया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट दूध लाया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट सब पकोड़े सब्जी भोजन पूरा लाया है, अच्छी तरह पंगत में बैठ जाओ, ये झगड़ा करने की जरूरत क्या है, साकरी कोर में आके बैठ जाओ। तो ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं पता है आपको, आकाश में दिख रहे हैं, क्यों आकाश में दिख रहे हैं पता है आपको, बताओ क्यों आकाश में दिख रहे हैं, सामने तो माल है ना खाने के लिए, आकाश में क्यों दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं आज सूरज पश्चिम में तो नहीं उगा ना, इसलिए वो देख रहे हैं आज क्या है ऐसा उल्टा कुछ हो रहा है, रोज तो इतना मुश्किल से मिलता है, आज तो बहुत आसानी से मिल रहा है, छोड़ो बात उसको मुश्किल से मिल रहा है आसानी से मिल रहा है, ले लो पहले चर्चा और उसका विश्लेषण बाद में करो। तो लोग बैठ जाते हैं और गोपियाँ ना इतना प्रेम से, इतना प्रेम से उनका परोसती है ना, उनकी पसंद की चीज़ें खाओ 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 करके, एक कृष्ण को बलराम को नहीं सभी ग्वाल बालों को, मधुमंगल को सुबल को सबको खिला रही है, और सब लोग ऐसा बोल रहे बस बस अभी पेट भर गया, बोला नहीं नहीं खाओ भी खाओ बहुत है अभी बहुत लाया है खाओ, तो इतना पेट भरता है ना फिर थोड़ा ऐसा झुक जाते हैं थोड़ा लेफ्ट में, फिर भी खाते हैं, बोले और खिलाते हैं, बोले और तो और थोड़ा झुक जाते हैं, फिर ना एक्चुअली लेट जाते हैं और फिर भी परोसा जा रहा है और लेट के भी खा रहे हैं, बीच में उठ के चल के बोल के आ रहे हैं फिर बैठ के फिर खा रहे हैं, लेकिन एंड में ऐसा होता ना चलना भी मुश्किल, पेट में इतना वजन हो गया तो पैर कैसे हिलेंगे, इतना वजन पेट में होगा तो पेट चलेगा कैसे, पैर चलेगा कैसे, तो बहुत देर चलने का प्रयास करने के बाद में फिर चल ही नहीं पा रहे हैं और ऐसा बैठना भी मुश्किल है। आपने कभी इतना खाया है क्या, कभी किसी को अनुभव है, हमको अनुभव है। एक बार राजानाथ महाराज जी ने अपने हाथ से भोजन बनाकर श्री वृंदावन के 1986 वाली पहली यात्रा में 18 आइटम धनुर्धर स्वामी और राधानाथ स्वामी ने हमको खिलाए थे, वो पूरा लंच प्रसाद 3 घंटे चला क्योंकि तो उसमें सब लोग चल रहे थे, लिटरली चल रहे थे सब, माता जी प्रभु जी सब, हमारे विशाखा माता जी ब्रजेश्वरी हमारी गुरु भाई सब लोग चल रहे हैं, हमारे बोले आपको भी 18 आइटम है अभी तो 12 ही दिए, 6 ही दिए ही नहीं है, वो खाना है आपको, तो हम लोग पूरे चल रहे हैं वापस बैठ रहे हैं, चल रहे हैं वापस बैठ रहे हैं, एक बार वृंदावन के गुरुकुल में हुआ था और एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ था, नित्यद्वैत स्वामी और राधानाथ स्वामी, और यहाँ पर धनोरु स्वामी और राधानाथ स्वामी। पूरा वेस्टर्न आइटम, ब्रेड स्टिक्स, ये वो सब बहुत बढ़िया प्रसाद था, और इतना हम लोग टाइट हो चुके थे ना कि एंड में उठ ही नहीं सके, उधर ही बैठे रहे बहुत देर तक। महाराज ने कहा यू कैन स्लीप हियर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्लीप हियर, जगह है, कोई काम नहीं है, आप दोपहर का समय है, आप आराम से सो जाओ, बाद में मंदिर खुलेगा दिखा जाएगा। वो दो भोजन में हमने पता चला कि जब पेट आकंठ, आकंठ का मतलब क्या है, कंठ तक आकंठ, हा जानू लंबित भुजौ, यानी जानू यानी इधर तक हाथ है उनके, हाँ वैसे होता है, और केवल हरे कृष्ण आंदोलन में आपको ये अनुभव आ सकते हैं। बाकी सारे मायावादी, ब्रह्मवादी, कर्मकांडी, ज्ञानवादी, निर्विकारवादी, इसमें सब नहीं होता, ये ऐसा आनंद जो है ना वो गौड़ीय संप्रदाय में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते खाओ पियो नाचो आनंद करो, दम थक गए तो सो जाओ, फिर उठो नहाओ नाचो, भूख लगी खाना खाओ प्रसाद खाओ फिर नाचो, फिर यही चैतन्य चरितामृत है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान जो है ना आखिर में चल नहीं पाए, लेट गए, फिर भी उनके मुंह में डाला गया, फिर भी वो चबाते रहे, क्या करें, ना प्रेम से दे रहे हैं, पता नहीं ऐसा दिन दूसरी बार कब आएगा। रोज तो युद्ध करना है, झगड़ा करना है, नोक झोंक करनी है, आज तो तकदीर ही खुल गई पूरी, ले लो देखेंगे आगे। और एक समय ऐसा आया कि वो सारे वहीं सो गए ना, अच्छी तरह सो गए, यानी यू नो समटाइम्स व्हेन यू ईट नाइसली ना, चार गुलाब जाम और चार मालपुआ, ऐसे एक दो कटोरी खीर, आप नंदगांव जाएंगे ना आपको पता चलेगा, और आठ 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 कटोरी खीर खाते हैं, खीर खाते हैं ऐसे चंगा बुड्ढे लोग एकदम, शुरुआत खीर से करते हैं, एंड भी खीर से करते हैं, बीच में भी खीर खाते हैं, और खीर वाला भी ऐसा जोरदार, आपने देखा ना कल रस मंदिर में देखा ना, अरे थोड़ा बड़ा अनुभव आपको भी दे रहा है हम लोग। हमारे लाला जी वैसे ही है, देते रहते आपको, इधर दानोगे तो पूरा कटोरा फुल, फिर आप छोड़ नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान सो गए, उधर बलराम भी सो गए, मधुमंगल, सारे लोग सो गए, और फिर सभी सखियों ने देखा, सब देखा जाके, बराबर सो रहे ना सब लोग, कोई ऐसा देख तो नहीं रहे ना, वो कंफर्म हो गया कि सब लोग सो गए। फिर सब गोपियां आई, चतुर गोपियां, उन्होंने कृष्ण के सारे गहने, नख शिखांत, नख शिखा यानी सारा, नख पैर में बोलते ना, नख और शिखा यानी ये शेंडी, नख शिखांत जितने भी थे, पैर में घुंघरू, हाँ वो पैर के घुंघरू जो है ना, उसकी एक कथा है कि वो घुंघरू यशोदा मैया बांधती है रोज श्रृंगार में, घर से निकलते हैं ना वो तो श्रृंगार करके निकलते हैं, तो यशोदा मैया बांधती है नबी उसको, तो तीन तीन ये घुंघरू बांधती है, और तीन तीन घुंघरू जो है ना वो कसकस के तीन तीन बार घुमा घुमा के बांधती है, क्योंकि हमारे नटराज नटवरलाल जो है तो जब नृत्य करते हैं ना तो ये वन में नृत्य कर रहे हैं, अगले वन में पायल वहाँ गिर जाती है, अगले वन में मिलेगी आपको, लेकिन अगले वन ढूंढने कौन जाएगा, वो जो उड़ गई उस समय भाव विभोर है, कहाँ उड़ गए क्या पता, आप हम डांस कर रहे हैं आपकी घड़ी कहाँ उड़ गई, आपका क्लिप कहाँ उड़ गया, किधर अंगूठी गिर गई क्या मालूम, हु नोज, क्योंकि लाइट गई फिर भी आप नाचते रहे तो फिर आनंद ही आनंद है ना। तो इसलिए कसकस के बांधते हैं, मैया ने बांधा हुआ जो घुंघरू है वो ग्वाल बाल नहीं निकाल सकता है, मैया और मैया जैसे वात्सल्य वाले ही खोल सकते हैं उसको, बाबा भी नहीं खोल सकते हैं, कभी कभी खोल सकते हैं, जैसे वो उखोल छोड़ा ना बाबा ने, लेकिन ग्वाल बाल नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन गोपियां खोल सकती हैं, क्योंकि गोपियां हायर रस में हैं, तो वो घुंघरू से लेकर खोल के सारा जमा करती है, ऐसा खोलती हैं रखती हैं, खोलते रखती हैं, सब सब ना एकदम सहयोग से लगी हुई है, एकदम बराबर निकाल रहे हैं, उनको पता है किधर किधर क्या है, कमर में कमर पट्टा है, कमर वो निकाल रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं तो गले में बहुत सारे हार हैं, हाथ में बहुत सारी अंगूठियाँ मुद्रिकाएँ हैं, फिर इधर ब्रेसलेट यानी क्या कहते हैं उसको, हाँ कलाई बंद, फिर बाजू बंद, हाँ फिर गले में, फिर कान में, फिर कान में बहुत सारे, विचार करो आप, फिर सब यहाँ पर भी मणि है उसको भी निकाल लेते हैं, कान में कुंडल है, फिर लास्ट में क्या है ना, इधर सोने की श्रृंखला है यानी सोने की जंजीर है, चेन है चेन, और उसमें मोर पंख लगा हुआ है, मियाँ वो भी बड़ा कस के बांधती है, वो भी खोलती है मोर पंख निकालती है, बीच में यहाँ टक किया हुआ जो मुरली है वो भी निकालती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सारा चोरी करेंगे, वो नहीं चोरी करेंगे तो सारा चोरी बेकार है आपका। तो सारी चोरी करते हैं, वो सारा श्रृंगार का सामान जो है ना बेचारे केवल धोती छोड़ते हैं, बाकी उत्तरीय भी निकाल लेते हैं, पूरा उत्तरीय वस्त्र भी निकाल लेते हैं। और कृष्ण आराम से सो रहे हैं अभी भी, पता ही नहीं उनको कुछ, इतना गहरी नहीं, इतना खीर खिलाया, इतना मालपुआ खिलाया। और सब लोग है ना अच्छी तरह से यशस्वी भाव में, विजयी भाव में सब चले जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। वो सारा सामान जो है राजा रानी के घर उसको पहुंचाते हैं, जो भी चोरी किया हुआ है। बोले अब भी सबक सीखेगा, सबक सीखेगा ये अच्छी तरह से। हमको उल्लू बनाता है हमेशा, आज मैया भी अच्छा डांटेगी, अच्छा फटकार देगी, अच्छा डंडा लगाएगी, तो समझ में आएगा ये चोरी का क्या परिणाम होता है और हमारे साथ चोरी करने का अंजाम क्या होता है, आज समझ में आएगा। बहुत घंटे बीत जाते हैं, तो हमारे ऐसा मेडिकल में लिखा है कि जब स्टमक फुल होता है ना तो मिनिमम 4 घंटे लगते हैं उसको ढीला होने में। वो न्यू वृंदावन में ना कभी कभी वो होता है ना गुलाब जामुन, उसकी बची हुई चाशनी पीने का प्रतियोगिता होती थी, और ये 3 ग्लास पी रहा है, ये 4 ग्लास पी रहा है, ये 6 ग्लास पी, ऐसे भक्त थे वहाँ पर। और उसके बाद में वो चाशनी, पता है चाशनी बहुत सारी होती है, आप एक एक गुलाब जाम खाएंगे तो मेरा बचता है पूरा। वो पूरा भक्त लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, न्यू वृंदावन के करते थे, राधानाथ महाराज भी उसमें रहा करते थे। और फिर उतना पेट होता ना टाइट सा, टक टक आवाज आ सकता है, आप हाथ लगाएंगे तो बोर्ड जैसा होता है बोर्ड। और वो पेट लेकर ना सब लोग उधर लकड़ी की फर्श होती है, वुडन टाइल्स, वुडन फ्लोर, उसमें लेट जाते हैं, और उसको कहते थे बोर्ड मीटिंग। तो वो ऐसा कहते नहीं थे कि अभी हम चाशनी पियेंगे, वो कहते हैं आज बोर्ड मीटिंग करते हैं। तो सब लोग बोर्ड मीटिंग करते थे और उसमें कई घंटे रहते थे कि जब तक वो चाशनी प्रोसेस करके नीचे नहीं चले जाए तब तक वो उठ भी सकते नहीं थे। उसी तरह से ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक तो गहरी नींद में सो रहे हैं। नींद क्यों आती है पता है प्रसाद के बाद में? किसी को आइडिया है क्या प्रसाद खाने के बाद नींद क्यों आती है? आप डॉक्टर नहीं होने जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। सारा खून जो है ना, जो है सब जगह घूम रहा है अपने अपनी मर्जी से, उसको खींच के पेट में लाया जाता है, चलो भाई हजम करो जो पेट में डाला है, हमको बाद में मिलेगा। तो सारा दिमाग से भी सब जगह से भी ऐसा बॉडी एकदम ढीला हो जाता है, क्योंकि सब खून जो है वो इधर पेट में आ जाता है। और दिमाग का जब आता है तो दिमाग को कुछ काम नहीं, तो फिर क्या होता है? नींद आनी थे बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? गो टू स्लीप। जब तक खून चल रहा है ठक 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 तो अलर्ट, जब ठंडा हो गया तो जमाई आती पहले, बाद में आराम से सो जाते हैं, फिर बहुत देर के बाद में उठते हैं, सब लोग उठ जाते हैं और क्या देखते हैं? सारे अलंकार गायब, सबके गायब, लेकिन कृष्ण के भी गायब। तो कृष्ण सरदार है ना उनका, तो कृष्ण उठते देखते हैं, अरे तो पूरा खाली कर दिया पूरा सामान, कुछ भी नहीं है, क्या मैया को बताऊंगा अभी, क्या जवाब दूंगा? चलो भाई एक घुंघरू 3 में से उड़ गया किधर, तुम समझ सकती हो ये पूरा श्रृंगार कहाँ छोड़ गया, किसको दिया, क्या हुआ बताओ, ऐसे सब चिंता हो रही मन में। लेकिन कृष्ण अंतर्या में वो समझ जाते हैं कि ये सब राधा रानी गोपियों का खेल है, चलो कोई बात नहीं। सखियों को बोलते हैं डोंट वरी, सखाओं को बोलते हैं डोंट वरी, मैं इसका उपाय करूंगा, उनको बहुत अपने आप को होशियार समझती है, मैं उनसे सवा शेर होशियार हूँ। तो घर जाते हैं, मैया पूछती है, बार बार प्रश्न पूछती है, बोला मैया कोई चिंता मत करो, कोई प्रश्न मत करो, आपने पहनाए हुए सारे अलंकार आपको वैसे ही वापस मिलेंगे, आप निश्चिंत रहो, थोड़ा समय दो। तो मैया कहते ठीक है, बालक इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसका मौका देना चाहिए। सो जाते हैं, सुबह उठते ना तो एक सुंदर सी गोपी इतना लंबा घूंघट ओढ़कर मैया का आशीर्वाद लेने आती, जैसे नई नवेली होती है ना दुल्हन, वो ब्रज में वो कितना लंबा घूंघट है उससे पता चलता है कि कितनी नई है ये। कल की ब्याही हुई है कि एक हफ्ते की ब्याही हुई है कि एक महीने की ब्याही हुई है कि 6 महीने की ब्याही हुई है, उतना वो ऊपर ऊपर आता है, वेल वेल यानी पल्लू यानी पदर। हाँ, तो वो एकदम नई नवेल लग रही थी, पूरा इतना तक घूंघट ओढ़ के श्रृंगार करके, पूरा हाथ पाथ दिख रहे हैं, पूरा कंगन भरे हुए हैं, मेहंदी लगी हुई है। तो मैया चरण स्पर्श कर रही हूँ, बोला बेटा कौन हो आप? बोले मैं नई नई ब्याही दुल्हन हूँ। अच्छा, वो कहाँ से आई, वो कहाँ से विवाह हुआ है? बोले आवाज़ तो पहचान की लग रही है, बताओ बताओ, तो मैं तो तुम्हारी थोड़ी देवरानी या जेठानी या कुछ ससुर थोड़ी हूँ, मैं तो मैया हूँ, मुख दर्शन कराओ। तो मुख दर्शन कराते हैं तो श्याम सुंदर जी हैं स्वयं। बोला आज ये क्या है नया रूप पहन के जा रहे हो? भैया मैंने कहा ना सारे गहने लौटा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहो। पूरा गंगट ओढ़ते हैं बरसाने की ओर, कुछ करते हैं हाँ। सखा लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और ये जो गोपी बनकर जा रहे हैं श्यामा गोपी श्यामा सखी वो सबसे आगे हैं। और कभी ना आराम चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसाने में प्रवेश करते ही हे गोपाल, बेहोश हो जाते हैं। अरे सब गोपियों को गोपाल किसको पुकार रहे हैं? गोपियां गोपाल को प्रेम करती है और गोपाल को कोई नई सखी पुकार रही है। सब गोपियां इकट्ठा होती है कुछ गोपियां और देखते तो बेहोश हो रही है, इतना प्रेम। नई नवेली नंदगांव से आई गोपी इतना प्रेम करती है, अरे हमें भी इतना प्रेम नहीं है गोपाल के ऊपर। तो कैसे भी जगाते उसको और उसको ऐसा पकड़ पकड़ के आगे ले जाते। थोड़ा आगे जाते तो हे कन्हैया, वापस बेहोश। जितने भी नाम है ना वो सब पुकारती है, वो मतलब पुकारता है। और जैसे ही नाम पुकार के बेहोश, और गोपियां और अधिक गोपियां और अधिक गोपियां इकट्ठा होती है क्योंकि खबर फैलती है ना ऐसी नई नवेली गोपियां है। किसी के मन में ईर्ष्या नहीं है, अरे हम इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये कौन है प्रेम करने वाले, इसको भगाओ यहाँ से, ये तो हमारा स्थान ले लेगी, हम पर कृष्ण देखेंगे नहीं अगर इतना प्रेम करने वाला है तो, इसको दोबारा बाजू में करो, अरे हमारा क्या होगा। नहीं, सब किसी में ईर्ष्या नहीं है, किसी को उल्टा आदर है कि हमसे भी अधिक कोई प्रेम कर रहा है, कितना आदरणीय कितना पूजनीय है ये गोपी। ऐसे करते करते ना सारा बरसाने का गोपी समुदाय वो एक को देख रहे हैं, वो ऐसा कहते ना भाव विभल होकर ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं और ऐसे कृष्ण कृष्ण कर रहे, बीच में श्याम सुंदर जी ऐसे पुकार रहे और वापस बेहोश। अभी तो उनको चिंता होने लगी कि मर तो नहीं जाएगी कहीं, इतनी बार बेहोश हो रही है, अगर इतना ब्लड सप्लाई दिमाग से कम हो जाएगा तो मृत्यु भी हो सकती है, क्या मालूम। लास्ट में उनको कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, उनको राधा रानी को मिला देते हैं, कम से कम राधा रानी के संग से ना थोड़ा सांत्वना मिलेगी। उनको देखकर ही पूरे ब्रजवासी जीवित रहे थे, जब कृष्ण गए थे ना ब्रजवासी कब के गुजर जाते उनके इस वियोग में, क्यों जीवित रहे? राधा रानी को देख देख कर जीवित रहे कि इसको देख कर कन्हैया आएगा एक दिन, ये है तो कन्हैया जरूर आएगा, उसको देख देख कर जीवित रहे। तो राधा रानी को देख कर सांत्वना मिलेगी तो जिएगी, तो लगता है कि कलित गात्र हो गई है पूरी। तो राजा रानी के महल के मतलब कमरे के महल के अंदर के कमरे के कक्ष के दरवाजे में उसको लेके आते हैं और उधर एक फाइनल किलकारी लगाते हैं। फाइनल मतलब क्या? सबसे जोर से सबसे जोरदार किलकारी श्याम सुंदर के नाम की लगाती है और गिर जाती है। इतनी बार तो कैसे भी जल छिड़के ये करके हवा देके वो जगा दिया, इस बार जो भी करेंगे आप सब असफल है, कोई उपाय का काम नहीं हो रहा है उधर। मानो गई गोपी, और पल्लू ऐसा ही है, चेहरे का दर्शन नहीं हो रहा है, पूरा श्रृंगार दिख रहा है, पूरा कंगन सब कुछ दिख रहा है, चेहरे का दर्शन नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत परेशानी हो गई। अभी कैसा होता है ना, मैंने कहा ना आपको, जब कोई संकट आता है ना किसी प्रकार का समस्या होती है तो समस्या लेकर कहाँ जाते हैं? ललिता के पास जाते हैं। ललिता वो सबकी जोर की गोपी है, वो उनके पास सब सोल्यूशन होता है। कोई कृष्ण का मुकदमा भी है तो वो उसके साथ पहुँचता है, कई बार मुकदमे हुए यहाँ पर, तो ललिता चीफ जज है, वो बोलेगी वो हो जाता है। तो ललिता के पास गए, ललिता ने विशाखा को बुलाया, वृंदा देवी को बुलाया, सबको बुलाया, मीटिंग किया, क्या करे तो गोपी इतना प्रेम करती है, ऐसे गोपी को मरना नहीं चाहिए, जीवित रहना चाहिए, क्या करे क्या करे, सब लोग डिस्कस करते हैं। तो एक गोपी कहते हैं आइडिया, लोग क्या आइडिया आ गए बताओ? तो कहते हैं कि कल हमने सारे गहने कृष्ण के चुराए थे ना, चलो राधा रानी को श्री जी को ये सारे पहनाते हैं, उनको सांवला रंग लगा लेते हैं और कृष्ण बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्ण बनाकर प्रस्तुत करेंगे तो ये बहुत शांत हो जाएगी, कृष्ण का दर्शन हो गया तो मृत्यु को नहीं प्राप्त करेगी। वापस जाके कुछ गोपियों को बोला अरे इसको संभालो, हवा देते रहो। तो किसी ने रुई लाई और देखा तो कोई हाथ में हृदय में कोई कंपन, कहीं भी कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन नाक के पास थोड़ी थोड़ी रुई हिल रही है, यानी अभी तक जान है। बोला अच्छा है जान है। कुछ गोपियों को तुरंत भेजा, जाओ अंदर जाओ और राधा रानी के पास सारा श्रृंगार रखा हुआ है उनका श्रृंगार करो पूरा अलंकारों से, नखशिखांत। तो वो श्रृंगार करते हैं, तब तक इनको पता नहीं कि श्रृंगार करने तक वो गुजर जाएगी, जल्दी जल्दी करते हैं। राधा रानी को भी खबर हो गई है कि ऐसी गोपी आई है, वो भी बहुत जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसे कर रही है, वो वहाँ पर गोपी हवा दे रही है। और एंड में कैसे भी करके राजा रानी को कृष्ण बनाकर दरवाजे की चौखट पे लाते हैं। बोला लो मुरली अभी बजा मुरली, तो वो मुरली बजाना शुरू करते हैं। वो कृष्ण के गुरु है, वो प्रॉब्लम नहीं मुरली बजाने में, कुछ कृष्ण को मुरली उसने सिखाया। तो जैसे ही मुरली बजाते ना राजा रानी, तो सब गोपियां इस गोपी के कान में बोलते हैं, अरे देखो देखो श्याम सुंदर जी आए हैं, देखो मुरली बजा रहे हैं, अभी तो उठो। तो बताए क्या हुआ, वो ना ऐसी छलांग लगाई उसने 6 फीट तक, ऐसा पल्लू ऐसा उड़ाया और हवा में छलांग लगाई और बोला ए पकड़ा के लिए तुमको मैंने, बहुत होशियार बनते हो, अभी क्या करें, आप ही सामना पूरा चोरी का माल लेके पूरा ऐसा पूरा सज धज के खड़े, कुछ छुपाने का चांस नहीं है, ये मुरली छुपा रहे कहीं ऐसा छुपा रहे, पूरा ऐसा पब्लिक शो है पूरा, वो दिखाने के लिए ही तो बनाया था ना, वो थोड़ी छुप छुप के ऐसा का शाल ओढ़ के ऐसा कुछ नहीं था, वो दिखाने के लिए बनाया था। इस प्रकार से छलांग मारी ना, सब गोपियां दिग्मूढ़ हो गई, दिग्मूढ़ का मतलब क्या था ना, अचंभित हो गई, अरे अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनपेक्षित घटना कैसे हुई। लेकिन सब लोग इतने सहमा गए, इतने संकोचित हो गए, और कृष्ण ऐसे खड़े हैं उनके सामने और थप बाल बाल प्रकट हो जाते हैं, ए गोपियों बहुत होशियार बनते हो। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे रुबाब से, पहले वो मुरली छीन लेते हैं उनसे, बता ना कैसे, यू नो ना हाउ कृष्ण इज ऑलवेज डूइंग दिस, ऐसा खड़े रहते हैं ऐसे और मुरली घुमाते रहते हैं, भले उतारो एक एक करके उतारो, और ग्वाल बाल भी हाँ उतारो बिल्कुल उतारो। पता है ना अपना सरदार जब भी विजयी होता है तो बाकी लोग भी हे अच्छा करो। सब गोपियाँ चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ झुका हुआ ऐसे लज्जित होकर चुपचाप, ललिता इतनी तेज वो भी चुपचाप जाकर श्रृंगार उतार रही है, और ग्वाल बाल बड़े उत्साह में है, हाँ बहुत होशियार बनते हो गोपियाँ तुम लोग, हमारा सरदार देखो कितना होशियार है, एक से हमने चालाकी मत करना कभी। तो ऐसे खड़े आराम से, और वो जो उतार रहे ना, वो पहले घुंघरू उतार रहे हैं, घुंघरू उतार के दे रहे हैं, तो सखा लोग घुंघरू पहना रहे हैं, ऐसे करते करते ऊपर का सामान पहला सब पूरा श्रृंगार होता है। थोड़ा ध्यान करो उसके ऊपर, आप चरणों में घुंघरू बांध रहे हैं, फिर कमर बंद बांध रहे हैं, हाँ कमर का छल्ला बांध रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, अंगूठियाँ पहन रहे हैं, मुद्रिकाएँ पहन रहे हैं, बाजू बंद कलाई बंद पहन रहे हैं, गले में सारे कंठहार पहन रहे हैं, हाँ बहुत सारा श्रृंगार, बहुत सुंदर सारा श्रृंगार करके आखिर में वो सोने की जंजीर वो टाइट करते हैं, उसमें मोर पंख जो है वो टक कर देते हैं, फिर कृष्ण अपना अपना पोज देते हैं। सब लोगों को बहुत संकोच है, बाकी समय पर वो देख पोज देंगे लोग मोहित हो जाते हैं, इस समय बड़ा संकोच और बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा पराजय हो रहा है, और ये बड़े विजयी भावना से अपनी पोज में खड़े हैं त्रिभंग मुद्रा में। तो कहते हैं अगली बार चालाकी मत करना, अभी तो यहीं पर ही छोड़ दिया है, अगली बार ऐसी लीला करूंगा ना अब सब लोग भाग जाओगे यहाँ से, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर घर पे आते हैं, लो भैया लेके आया ना, मैं बोला था ना आपको सब लिख दिया, अभी आप मुझे बताओ इस लीला के किसी भी बीच में हा 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 करके राक्षस आ सकता है क्या, पॉसिबल है, बेचारी गोपी पड़ी हुई है बेहोश, उसमें राक्षस आया तो मारेगा कौन उसको, मधुमंगल मारेगा कि सुदामा मारेगा कि सुदामा मारेगा, नहीं हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा, कल इसमें कितने लोग रहेंगे, कल इसमें कथा में कितने लोग रहेंगे, हाँ जिन्होंने दांत उखाड़ दिए हैं वो कल चले जाएंगे, जिन्होंने आंखों को सवारा है दृष्टि दी है वो रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। ये भूमि ऐसी है ना बरसाने की, कब दिखेंगे उसका भरोसा नहीं है, जागरूक रहो अलर्ट रहो, यहाँ उधर क्या बोलते हैं पकौड़ा मिल रहा है, उधर लस्सी मिल रही है, उधर गन्ने का जूस मिल रहा है, उधर ये मिल रहा है, उधर वो मिल रहा है, हाँ टिक्की मिल रही है यहाँ की फेमस, वो देखो मत उधर उधर, कृष्ण को ढूंढो, लता पता में देखो कहीं कृष्ण तो नहीं मिलेंगे, हा? पाती पाती पे श्याम सखी, पाती पाती पे श्याम, डगर डगर पे श्याम, यानी गागर में भी श्याम, पानी में भी श्याम, नदी में भी श्याम, पेड़ में भी श्याम, पुष्प में श्याम, पत्ते में श्याम, हर जगह पे श्याम, शाम भई मैं शाम, मैं भी लगता है मैं भी शाम हो गई, शाम मैं होकर मैं ही शाम हो गई, ऐसे गोपी कह रही है। ये भूमि है वो जहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। और यहाँ के संत लोग बताते हैं, अरे ध्यान रखो कहीं मिल न जाए तुम्हें। हाँ, सनातन गोस्वामी नंदगांव में भजन कर रहे थे, 3 दिन तक ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना दूध पिया, ना माधुकरी किया, कुछ नहीं किया। 4th day पे आ गए, बाल बाल आ गया उधर, बोले महाराज आप तो भोजन करते नहीं हो और भिक्षा भी नहीं मांगते हो, और जो भिक्षा नहीं मांगते उनको मैं दूध पिलाता हूँ, लो पियो। इतना सब कर रहा, थोड़ी भजन करते हैं, दूध तो पियो कम से कम। तो वो दूध पिया, बोले मैं लोटा लेने को बाद में आता हूँ। तो बड़ा मुँह रूप मुख देखे बहुत मोहित हो गए, लेकिन बच्चा चला गया। और दूध जब पिया ना तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कांपने लगे, वो आँखों से अश्रु, गले में से गदगद, ऐसे रोमांच खड़े हो गए। तब उन्हें अनुभूति हुई थी तो कृष्ण था। फिर ढूंढ रहे सब जगह, भाग रहे, किधर गया लड़का, किधर गया, किधर भी नहीं आया, फिर सपने में आया। माधवेंद्रपुरी का भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर किस रूप में आएगा उसका भरोसा नहीं है। कितनी कथाएं यहाँ की, यहाँ के ब्रजवासियों ने राधा रानी का, कृष्ण का दर्शन किया हुआ है, मान मंदिर की कितनी कथाएं हैं। दिखते हैं झट से गायब हो जाते हैं, लेकिन दर्शन देते हैं। जिनका हृदय शुद्ध है, प्रेम में बसा हुआ है, प्रेम में संपृक्त है, प्रेम में डूबा हुआ है, उनको यहाँ पर राधा रानी श्याम सुंदर जी जरूर दर्शन देते हैं, जरूर दर्शन देते हैं। आप विश्वास रखो इस बात का, इसी भावना से यहाँ आओ और नियम तोड़ के यहाँ वहाँ जाने का प्रयास मत करो। अच्छी तरह सेवा में रहो, हृदय से सेवा करो, अपने आप को सेवा में अर्पण करो, फिर देखो उसी सेवा में आएंगे वो। क्योंकि मैंने कहा था आपको, सेवा में से, सेवा करने से ठाकुर जी बंद जाते हैं, ही गेट्स टाइड अप, बाउंड हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं वो, और किसी के पकड़ में नहीं आते वो। हाँ, क्या वो श्लोक है, दुर्लभम आत्मभक्तो, क्या सुदुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, कि वो किसी को नहीं मिलते हैं, किसी सबके लिए दुर्लभ है वो। योगी भी धान अगम्यम, योगी के ध्यान में भी पकड़ में नहीं आते हैं, किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, ना ध्यानियों के, ना तपियों के। अरे उनके 20 नाखून है और पूरा शरीर है, उसमें से अनंत ब्रह्म ज्योति निकलती रहती, अनंत, पूरे आध्यात्मिक विश्व और पूरे भौतिक विश्व सबको प्रकाशित करते हैं। आकाश नीला क्यों है, वो उनकी आभा है भगवान की। आकाश में देखो और भगवान को याद करो, ये भगवान का प्रकाश है, सब जगह फैल रहा है। वो जो किरण है भगवान के नाखून से आनंद किरण निकलते हैं, उसमें से एक नाखून से निकलने वाला एक किरण भी इन हजारों वर्ष, हजारों जन्म तप करने वाले तपियों को, ध्यानियों को दिखता नहीं है वो, इतने दुर्लभ है वो। और वही अति दुर्लभ भगवान जो है, वो गोपियों, गोपियां उनको अपनी लंबी लंबी लटकन में बांध के, एज अ पेट, क्या कहते हैं उसको, पालतू प्राणी, पालतू जानवर कैसा होता है ना, उसको बांध के लेके जाते हैं ना, वैसे कृष्ण को चलाते हैं वो। तो कृष्ण भी बड़े प्रेम से अपने आप को बांध देते हैं उनके लटकन में, ताको बांध्यो तेने लटकन में, वो लटकन यानी वेणी, उसमें बांध के वो लेके जाते हैं उनको। बार बार चुल्लू भर छास देकर बार बार नचवाते हैं, चुल्लू बस छास देकर अहिर की छोरियां नाच नचावे, अहिर की छोरियां यानी गोपियां। ये प्रेम की भूमि है, बिना प्रेम के यहां पर ठाकुर जी किसी को प्रकट नहीं होते, लेकिन सेवा करने के लिए, करने वालों के लिए प्रकट हो सकते हैं, इस पर विश्वास रखना, निष्ठा रखना, और अधिक निष्ठा रखना, अगली बार आना और अधिक निष्ठा से सेवा करना, अवश्य दर्शन देंगे ठाकुर जी। कभी तो सुनेगी मुरली की धुन को, कभी तो सुनेंगे चरणों के नूपुर, क्या अर्थ हुआ उसका, मैं तो सेवा कर रहा हूं, बुहारी कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी वो बुहारी करते करते झाड़ू लगाते लगाते कभी मुरली की तान सुनाई पड़ेगी, कभी पैरों के झुमछुम झुमछुम सुनाई पड़ेंगे। हुआ भाग्य झाकी निहारा करेंगे, अगर भाग्य हुआ तो देखेंगे उनको, लेकिन झाड़ू लगाना नहीं छोड़ेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे। ये भाव है भक्तों का, और इस भाव को राजा रानी ने प्रतिसाद दिया है। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಹರಿ ಬೋಲ್.